आप SBS उर्दू के साथ हैं।
ऑस्ट्रेलिया में कोविड 19 के दौरान बहुत से कारोबार भारी खसारे का सामना कर रहे हैं और बहुत से बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस को बंद करते वक्त दिवालियापन या बैंकरप्सी का मालकान की जाती जायदाद और असासों पर क्या असर पड़ सकता है और इस सिलसिले में किन एहतियातों की जरूरत है, आइए इस मौजू पर सॉलिसिटर एजाज खान से बात करते हैं।
कि ये बिजनेसेस जो छोटे कारोबार जिस तरह के होते हैं, हमारी कम्युनिटी में बहुत से लोग करते हैं, इस तरह के बिजनेसेस की अगर कोई इंसॉल्वेंसी होती है या लिक्विडेशन का लफ्ज़ सुनने में आता है या बैंकरप्सी सुनी जाती है, तो ये क्या ये तब एक ही अल्फाज हैं या ये कुछ दिवालियापन की मुख्तलिफ अकसाम हैं?
स्मॉल बिजनेस होता क्या है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में जो लॉ में एनी बिजनेस जिसकी टर्नओवर 10 मिलियन तक हो, $1 से लेके $10 मिलियन तक, कोई भी बिजनेस, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, उसको स्मॉल बिजनेस कंसिडर किया जाता है। अब स्मॉल बिजनेस में कि जी लिक्विडेशन क्या है, इंसॉल्वेंसी क्या है और बैंकरप्सी क्या है, अगर तो वो स्मॉल बिजनेस जो है वो PTY LTD कंपनी के अंडर चला रहे हैं तो उसको लिक्विडेट कर सकते हैं उसके क्रेडिटर्स। लेट्स से कि किसी ने उसको 100,000 का स्टॉक दिया, वो कंपनी जो है वो उसको 100,000 वापस करने में नाकाम हो गई, तो वो जो क्रेडिटर है वो कोर्ट में जा सकता है और उसके ऊपर लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि वो कंपनी जो है वो नुकसान में चल रही है, और अगर वो चल रही है तो ये डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो इट्सा को इन्फॉर्म करे कि जी मेरी कंपनी जो है नुकसान में चल रही है, ताकि उसको फर्दर नुकसान से बचाया जा सके। फिर इट्सा वाले उसको टेक ओवर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फिर उस कंपनी का बिजनेस चलाता है। तो अगर तो वो कामयाब हो जाए उसको दोबारा प्रॉफिट में लाने में, जो कि अक्सर नहीं होता, तो फिर तो वो कंपनी को चलाता रहता है। लेकिन अगर वो कामयाब ना हो तो फिर वो कंपनी के एसेट बेच के क्रेडिटर्स को जितनी भी अमाउंट पे कर सकता है वो कर देता है, और उसके बाद वो कंपनी को वो फिनिश कर देते हैं। अब रही बैंकरप्सी, अब अगर कोई साहब जो हैं वो सोल ट्रेडर हैं, उन्होंने एक नाम रजिस्टर करवाया हुआ है और उसके अंडर अपना काम कर रहे हैं, जो कि अक्सर हमारी कम्युनिटीज़ में ऐसे ही होते हैं कि दुकान खोल ली, रिटेल की दुकान खोल ली, लेकिन कोई PTY लिमिटेड कंपनी रजिस्टर ना करवाई, तो उनकी सूरत में यह है कि अगर क्रेडिटर्स उसको सू करना चाहें और उसको सू कर दें, जजमेंट हो जाए उनके खिलाफ, तो फिर उनको बैंकरप्ट किया जा सकता है। या दूसरी सिचुएशन ये है कि वो खुद ही ये महसूस करते हैं कि उनके क्रेडिटर्स जो हैं, उनका उधार जो है, लोन, वो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो उनके बस की बात नहीं है कि वो उसको पे कर सकें, तो वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर सकते हैं। और उस बैंकरप्सी में फिर ये होता है कि वो 3 साल तक किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, कोई और बिजनेस नहीं खरीद सकते, इन सम केसेस उनकी ओवरसीज ट्रैवल पे भी पाबंदी लग जाती है, और फिर उसके बाद उनके जो इनसिक्योर क्रेडिटर होते हैं, जैसे जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्रेडिट कार्ड हुआ या कोई ऐसे लोन जिसके बदले में कोई प्रॉपर्टी प्लेज नहीं करवाई हुई, वो वाइप आउट हो जाते हैं।
कारोबार को मुस्तकिल नुकसान हो रहा हो तो क्या वो इंसॉल्वेंसी में जाए बगैर भी अपना बिजनेस बंद कर सकता है?
जो डायरेक्टर होता है किसी भी कंपनी का, उसकी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज होती हैं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो कंपनी को, अगर कंपनी नुकसान में जा रही है, घाटे में जा रही है, तो उसको कंपनी को बंद करे या उस कंपनी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा जो है वो ना चढ़ाए। तो सोल ट्रेडिंग में ये नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स की ड्यूटी में ये है कि अगर डायरेक्टर अपनी ड्यूटीज ब्रीच करता है तो उसके ऊपर वो क्रिमिनल ऑफेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल की जो सिचुएशन में, मेरा ख्याल है एसिक जो के कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है किसी को प्रोसिक्यूट करने के लिए, लेकिन लॉ इज देयर, और पास्ट में एक AI इंश्योरेंस हुआ करती थी, तो उन्होंने कंपनी को इंसॉल्वेंट चलाया था, तो उसके डायरेक्टर को 7 ईयर जेल हुई थी। तो इसलिए इसका जवाब ये है कि अगर आप को पता चल जाए कि कंपनी इंसॉल्वेंट है तो प्लीज़ स्टॉप, टेक सम मोर एडवाइस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस कंसल्टेंट से, लॉयर से आप एडवाइस लें पहले। एडवाइस लेने के बाद देखें कि आप कंपनी को डेट से बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर नहीं निकाल सकते तो एक्शन लें और उस कंपनी को जो है वो इर्सा के पास ले जाएं, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें उसके ऊपर।
कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जब आपको कर्ज पे सामान दे रहे होते हैं तो वो आपसे एक माहिदा कर लेते हैं, पर्सनल लायबिलिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करते हैं। तो पर्सनल लायबिलिटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त कितनी एहतियात की ज़रूरत है?
ये आपका सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके सुनने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हैं, स्पेशली क्रेडिटर नोट्स या जिसमें पर्सनल गारंटी इन्वॉल्व हो, तो लॉयर से एक दफ़ा मशवरा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी क्रेडिटर का एक डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट साइन कर दिया हुआ है और उसमें यूजली एंड के ऊपर जाके एक पर्सनल गारंटी होती है, क्रेडिटर्स ये करते हैं कि जनाब हम आपको ये स्टॉक दे रहे हैं, ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने हमको इतनी पेमेंट करनी है, लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है वो हमारे जो हमारी बिल्स हैं उसको पूरे नहीं करते तो आप पर्सनली लायबल हैं, तो उसको हम पर्सनल गारंटी कहते हैं। तो पर्सनल लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कंपनी आपकी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, इवन उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठ जाता है, तो फिर भी वो क्रेडिटर जो है वो आपके पर्सनल एसेट जिसमें घर होगा, आपकी गाड़ी होगी या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी या आपके पर्सनल एसेट कहीं और पे मौजूद होंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके पीछे वो आ सकते हैं और वहाँ उनको बेचकर वो अपना क्रेडिट जो है वो पूरा कर सकते हैं। पर्सनल लायबिलिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर आपने अपने क्रेडिटर्स को ये लिख के दिया हुआ है कि मैं आई एम पर्सनली लायबल फॉर द क्रेडिट, तो अगर कंपनी आपकी जो है वो लिक्विडेट भी हो जाए फिर भी आपके एसेट जो हैं वो दाव पे लगे हुए हैं। क्रेडिटर अगर चाहे तो आपके पर्सनल एसेट के पीछे आ सकता है, ऑर्डर ले सकता है, उनको बेचने के लिए कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। सो उसमें आपका घर भी हो, जो भी आपके पर्सनल एसेट्स हैं वो उसमें आते हैं। अगर आपने क्रेडिटर के साथ एक और डीड ऑफ एग्रीमेंट साइन करके वो पर्सनल गारंटी को वॉइड कर दिया हुआ है या उसको कैंसिल कर दिया हुआ है, तो फिर आपके ऊपर आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं उसके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। वो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रस्ट बनाते हैं, फैमिली ट्रस्ट बना के सारे अपने एसेट जो हैं वो ट्रस्ट में डालते हैं ताकि उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो सेफ रहें। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आपको पहले तो बिज़नेस एडवाइज़र, कंसल्टेंट और अकाउंटेंट और लॉयर से, तीनों से पहले मशवरा करना चाहिए और फिर आप अपने एसेट्स जो हैं वो ट्रस्ट में लेकर जाएं या अपनी पर्सनल लायबिलिटी जो है वो कम से कम साइन करें अपने क्रेडिटर्स के फेवर में।
इंसॉल्वेंसी के बारे में अगर कुछ लोग और मालूमात हासिल करना चाहें या लिक्विडेशन या बैंकरप्सी के हवाले से, चाहे पर्सनल हो या बिजनेस हो, कहाँ इस सिलसिले में मुस्तनद मालूमात देखी जा सकती है?
गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है ITSA, अगर आप टाइप करेंगे गूगल में इट्सा ITSA इंसॉल्वेंसी ट्रस्टी, ये डिपार्टमेंट है और उसकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो आपके सुनने वालों के की उससे मदद हो सकती है।
अभी आप सुन रहे थे सॉलिसिटर एजाज खान से हमारी बातचीत, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में बिजनेसेस को बंद करते वक्त दिवालियापन या बैंकरप्सी डिक्लेयर करने से पहले एहतियात और मुशावरत की अहमियत का आपने जिक्र सुना। SBS उर्दू के पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके इस तरह की मालूमात आप बाकायदगी से सुन सकते हैं। तफसीलात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।